तो कहीं ना कहीं खुद से भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी लाइफ में हैं हम, और उसमें से जब हम एक अलग स्थान पर आए हैं तो आज आप सबसे मिलके एक अच्छे विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। ऑफिशियल हमारा शाम को आज इनॉग्रेशन होगा प्रोग्राम का, लेकिन लोकसभा में आपने देखा होगा जब सेशन स्टार्ट होता है उसके पहले एक जीरो आवर होता है, और जीरो आवर की भी डिस्कशन बहुत वंडरफुल होती है, है ना। तो हम लोग भी फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे शाम को, लेकिन ये जीरो आवर्स में भी आप सभी को कुछ ना कुछ मिले ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो आप सभी कंफर्टेबली बैठे, अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा, तो जरा एक बार अपने आप को देखो आंखें बंद करके, अपने आप को देखिए। मैं माउंट आबू की पहाड़ी पर सुंदर ज्ञान सरोवर कैंपस में परमात्मा के इनविटेशन पर विशेष स्पिरिचुअल पार्लियामेंट का मेंबर बनकर आया हूं, और इस समय इस ट्रेनिंग सेंटर के टॉप फ्लोर पर 8 नंबर हॉल में अपनी इस बहुत अच्छी सीट पर बैठा हूं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, फ्रेश हूं, फीलिंग हैप्पी, शांत हूं, प्रकृति का बहुत अच्छा सुख मिल रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं यहां से अपनी इनर पावर्स को चार्ज करके, शक्तिशाली हो करके प्रस्थान करने वाला हूं। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस मुझे यहां पर अपने अंदर संजोने हैं। आई कैन डू, ओके, ओम शांति। कितने लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं? ओके, कितने ऐसा कहते हैं कि मुझे मेडिटेशन नहीं आता? प्रेम से, नहीं आएगा तभी तो सीखेंगे, आता ही होगा बाय बर्थ, सब कुछ तो नहीं आता हमको, सीखना तो होता ही है। कितने लोगों को लगता है कि मुझे सीखना है मेडिटेशन? हाँ, प्लीज प्लीज आराम से रेज योर हैंड। ओके, तो अभी जो आपने किया एक मिनट डेढ़ मिनट, कनेक्ट हुए, खुद को ऑब्जर्व कर पाए, खुद को देख पाए, तो आप सभी ने मेडिटेशन सीख लिया। फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट चांस में आपने सीख लिया, तो क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करो। अपना राइट हैंड ऊपर करो। आपका ये राइट हैंड है वो एक एंटीना है, एंटीना है ये, और ऊपर आसमान से परे 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 परमात्मा है, कॉस्मिक एनर्जी है, सारे वर्ल्ड की पावरफुल एनर्जी वो आपके हाथ में आ रही है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि आप टॉप पे हैं, समुद्र किनारे से भी आप 1100 मीटर ऊपर है, और ये एनर्जी आप नीचे ले रहे हैं। थोड़ा नीचे लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा शाबाशी दे दीजिए। वाह, मैंने फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन का सीख लिया है। वेल बिगन इज हाफ डन कहा जाता है, तो बहुत कुछ आपको सीखना है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत आप सब कर रहे हैं। पूरे भारत से अलग अलग कोने से आए हैं, बहुत से इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले भाई बहने अभी तक नीचे हैं, वो आ चुके हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहे, वो पूछ रहे हैं कि हमको ये सेशन कैसे मिलेगा, लेकिन आप सभी पहुंच गए हैं। तो अभी का हमारा टॉपिक है आज के समय की एक बहुत बड़ी जरूरत, और उस जरूरत को समझने की हम कोशिश करेंगे, और उस जरूरत के द्वारा जो कुछ आज हम फेस कर रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स। आप सभी जानते हैं कि जैसे हम शरीर में शरीर को चलाने के लिए पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फूड लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और नींद लेते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं, और इससे हम फील करते हैं कि हमारा बॉडी हमें पूरा साथ दे रहा है, हम चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी इस बॉडी के अंदर भी डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारतीय प्राचीन परंपरा में, सनातन धर्म में उपवास का एक विधान है कि आप अपने पेट को मन भावन चीजें डालिए, खुशी से खाइए, लेकिन कभी कभी यह भी करना जरूरी होता है कि आप कुछ भी न खाएं, और उससे आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो रेस्ट मिलता है और एक प्रकार से ऑयलिंग का काम हो जाता है हमारी मशीन का, और वो आपकी अगले एक महीने तक, अगले सप्ताह के लिए आप जो भी खाने वाले हैं, जो भी आपको रस लेना है, स्वाद लेना है, उसके लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाती है, है ना। तो ये जितने भी प्राचीन समय के नियम बने हुए थे, इसमें बहुत बहुत सोच करके हमारे जो पुराने ऋषि थे, उन्होंने बहुत अच्छे विधान बनाए थे। अच्छा, आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसका नाम क्या है? स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट, और उसका हिंदी में एक टाइटल दिया है, स्वविधान से संविधान, सेल्फ डिसिप्लिन को, सेल्फ रूल्स को, सेल्फ कंट्रोल को, सेल्फ मोटिवेशन को, सेल्फ एम्पावरमेंट को हमें कैसे यहां से सीखना है, और वो लीड करेगा कि हम जहां भी होंगे, हर जगह, जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति, बंद कर दीजिए इसको, इतनी आवाजें आ रही, जरूरी नहीं, जिसको चाहिए फैन चला सकते हैं। हाँ जी, डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, कांच भी टूट सकता है। जिसको फील हो कि मुझे फैन चाहिए तो बता दीजिएगा। तो हम लोग जहां भी है, कहीं ना कहीं हम अपने रूल्स अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं, या अपने खुद के लिए भी हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करूंगा, मैं इतने बजे उठूंगा, मैं ऐसा भोजन करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, है ना। खुद के लिए भी हमारे कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उस पर चलते हैं। तो वो जो सेल्फ के लिए संविधान है, सेल्फ के लिए जो विधान है, लॉज है, वो कितने अच्छे हों कि हम एक नया संविधान बनाएं। आजकल संविधान जो देश में चल रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, उसके बारे में तो बहुत बार चर्चा होती है कि संविधान में कुछ बदलाव लाया जाए, समय प्रति समय बदलाव आया भी है, है ना, क्योंकि नीड्स जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलती है, सोसाइटी की भी नीड बदलती है, व्यक्तियों की भी नीड बदलती है, तो इस हिसाब से हमें अपने संविधान को बनाना होता है। तो लेकिन यहां आपको दिया गया है स्वविधान से संविधान, तो आप सभी ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुने गए हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट है। लेकिन उसमें आपको स्वयं के लिए क्या करना है, तो वैसे कई बार ये विषय और भी सेशंस में शायद डिस्कशन में आएगा, लेकिन ये जीरो आवर में इसलिए लिया है डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि आजकल हम सब उस दुनिया में उस टाइम में जी रहे हैं जिसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन का युग, ई कॉमर्स, ई मेलिंग, ई मार्केट और सारी चीजें हम कैसे कर रहे हैं अभी इंटरनेट के माध्यम से। और ये इंटरनेट के द्वारा जो चीजें हमको मिलती है वो एक तो बहुत इजी मिलती है, दूसरा बहुत फास्ट मिलती है ना, और तीसरा कि बहुत हैंडी है, हमारे पास है, हमें उसके लिए ना तो एक पन्ना पलटना पड़ता है ना कंप्यूटर ऑन करना पड़ता है आजकल तो, है ना। तो इस कारण से शायद ही कोई होगा जिसको मोबाइल चलाने की या इसकी कोई ट्रेनिंग दी गई हो, है ना, लेकिन अमूमन सब इसके अभ्यासी है, अभ्यासी के बाद उससे भी ज्यादा हो गए हैं एडिक्ट हो गए हैं, और एडिक्ट होते होते बहुत लोगों को मोबाइल से संबंधित डिजीज भी होने लग गई है। मोबाइल की और मोबाइल के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं ये दोनों का फिजिकली और मेंटली हम सब के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और वो जो इफेक्ट्स है वो आज ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिसके लिए अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना जरूरी हो गया है। अभी तक हम सुनते थे कि टोबैको फ्री इंडिया करने के लिए एक मूवमेंट जारी की गई, शुरू की गई, है ना, फिर अल्कोहल फ्री सोसाइटी के लिए बहुत सी चीजें हो रही है, लेकिन अब बहुत ज्यादा जो जरूरत पड़ रही है वो हो गई है कि इंटरनेट फ्री लाइफ कैसे हो सकती है। मोबाइल मुक्ति अभियान ये बहुत जल्दी अब इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और स्कूल में कॉलेजेस में शायद ये बहुत जल्दी चलाना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि अमूमन देखा गया है दुनिया के 5% लोग मेडिटेशन करते हैं, 5%, लेकिन वर्ल्ड के मोर देन 60% लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट पे यूज में लगे हुए हैं। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज आपको कहीं अप्लाई करना है तो गूगल फॉर्म भरना है, आज आपको परचेजिंग करनी है तो आपको फ्लिपकार्ट पे जाना है, अमेजोन पे जाना है, बहुत सारे साइट्स है, तो मजबूरी भी है हमारी कि हमें ये सब कुछ करना है। बैंकिंग तो इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है, ईमेल और सारी चीजें कम्युनिकेशन की है, लेकिन इन सब के साथ साथ एक चीज जो है वो है अवेयरनेस। विथ अवेयरनेस कोई भी चीज को आप कितना भी यूज करेंगे तो उसका कोई बैड इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन विदाउट अवेयरनेस अगर आप भोजन भी करते हैं तो भोजन का भी, जो कि जीवन का अमृत है, जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसका भी बैड इफेक्ट पड़ सकता है। आपको दूध पीना अच्छा लगता है, दूध जरूरी है शरीर के लिए मानते हैं आप, लेकिन कितना पीना, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है 10 लीटर पी लीजिए, क्या होगा, क्या होगा, आपकी हालत खराब होने वाली है ना। तो आपको अवेयरनेस है ना कि कितना दूध मुझे लेना चाहिए, है ना। बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि किस चीज के बाद कौन सी चीज लेनी है इसका ध्यान नहीं होता। आजकल आपको पता होगा एक चीज बहुत चल रही है, आम का सीजन है, तो अगर आप आम खाते हैं और उसके बाद में आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और अमूमन ऐसा होता है कि आजकल शादी में पार्टीज में लोगों को जैसे ऐसा लगता है कि एकमात्र मौका मिला है जिंदगी में ये दिखाने का कि मैं कितना रिच हूं, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सेस फूड के कितने सारे स्टॉल्स होते हैं, और व्यक्ति जाता है और ये भी सोचता है कि देना तो वही है तो क्यों नहीं अच्छी तरह से हर एक चीज का आनंद ले लिया जाए, कम से कम टेस्ट कर लिया जाए। और वो खट्टे के ऊपर, मीठा मीठे के ऊपर, फ्रूट फ्रूट के ऊपर, अनाज अनाज के ऊपर, स्प्राउट स्प्राउट के ऊपर, आइसक्रीम आइसक्रीम के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, और कोई ड्रिंक, और कुछ पता नहीं। और फिर क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, बहुत सी जगह पर शादी और पार्टी के बाद में बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई, कैजुअल्टी भी हो गई, ऐसी भी चीजें सामने आई है। तो जैसे वहां भी आपको अवेयरनेस जरूरी है, आपके सामने तो सब कुछ रखा जाएगा क्योंकि उनका अपना नजरिया है, उनको आपके प्रति प्यार है, उनको अपनी संपत्ति दिखानी है, उनको अपनी शादी को रॉयल बताना है, उनका जिंदगी में एक मौका है, लेकिन मेरे पास तो खाने के और मौके होंगे कि नहीं। तो वहां हमें अवेयरनेस जरूरी है। ठीक वैसे ही एक डिजिटल मार्केट भी हमारे सामने बहुत बड़ा है आज के टाइम में, और ये डिजिटल मार्केट में भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। कौन से स्टॉल में क्या है उस कंपनी का मार्का आपको पता नहीं, ऑथेंटिसिटी पता नहीं, लेकिन सब कोई सोशल मीडिया के मार्केट पर अपना सब कुछ बेच रहा है ना, सब कुछ परोस रहा है, और वो परोसने के साथ साथ इतने अच्छे अच्छे टाइटल के साथ परोस रहा है कि एक बार तो वो टाइटल पढ़ के, वो थंबनेल देखते ही एक बार तो क्लिक करने का मन कर ही जाता है कि वाह ये तो मैं कब से ढूंढ रहा था, ये यहां मिल रहा है, ओ यूट्यूब फ्री। अच्छा मैं एक भाई एक सर्वे बताता है कि ज्यादातर जो यंगस्टर्स है बिलो 35 जिनके लिए ये प्रोग्राम है ना, तो उसमें ये पाया गया है कि 5 से 6 घंटे तो एवरेज सभी का स्क्रीन टाइम है ही है, 5 से 6 घंटे। तो सोचिए कि जब जीवन में हमारे पास इंटरनेट नहीं था और सोशल मीडिया नहीं था और क्या कहेंगे मोबाइल नहीं था, तो ये 5-6 घंटे हम क्या करते थे, कभी बैक में जाके सोचो तब हम क्या करते थे, या हमारे पीछे के लोग, हमारे बड़े लोग, वो इन 5-6 घंटों में क्या करते थे, क्या उनका टाइम बर्बाद होता था, कुछ तो करते होंगे ना। तो वो चीजें एक तो आज हम नहीं कर पा रहे जो वो लोग करते थे। इसलिए किसी ने कहा कि फोन जब तक तार से बंधा था तो इंसान फ्री था, फोन जब से फ्री हो गया इंसान अब बंध गया, क्योंकि अब हमारे पास 24 घंटा कनेक्टिविटी है ना। आज का टाइम वो हो गया है कि इंटरनेट के बिना जीवन की संभावना ही नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इंटरनेट के बिना 4 घंटा बिताना ये अगर किसी को कह दिया जाए तो उसको लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़े जुर्म की पनिशमेंट दी गई है ना। विदाउट इंटरनेट 4 घंटा कहीं भी जाते, होटल में पहुंचे, विदेश में गए, एयरपोर्ट पे पहुंचे, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, कनेक्टिविटी ऑफ वाईफाई एंड पासवर्ड, है ना। तो ये धीरे धीरे हम सबकी लाइफ में हो रहा है। अच्छा ऐसी कितनी चीजें होती है कि वो 4 घंटे में न करने से मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ऐसा क्या हर समय इमरजेंसी होती है, होती है, अपने आप से पूछना, ऐसा भी सबके साथ कुछ भी नहीं हो रहा होता है, बट धीरे धीरे ये एडिक्शन हम सबको हो रही है। और 5-6 घंटे स्क्रीन टाइम है, लेकिन जो लोग ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करने लगे तो मोबाइल में गेमिंग आ गया, और जब से गेम आ गया, जब से जुआ आ गया, जब से उससे जुड़ी हुई इनाम आ गए है ना, कमाई जुड़ गई, उसके बाद तो यंगस्टर्स का बहुत ज्यादा टाइम उसमें जाने लगा। अभी अभी एक न्यूज आई थी कि साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स का स्क्रीन टाइम है और सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और वो 12 से 13 घंटे कंटिन्यूअस भी खेलते हैं, और उसमें डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए वो डायपर पहन के बैठते हैं। नो टाइम फॉर नेचुरल कॉल्स, ये सब टाइम वेस्ट लग रहा है उनको। कहां और कैसे ये दुनिया जा रही है? छोटे बच्चे खाना तभी खाते हैं जब, अच्छा उनको क्या पिछले जन्म में पता था कि मुझे ब्रेकफास्ट के साथ में मोबाइल मिलेगा? पहली बार किसी ने तो उसे दिया होगा, किसने दिया था और क्यों दिया था? बहुत बड़ा रीजन भी नहीं था, है ना? छोटे छोटे रीजन होंगे कि भाई मैं थोड़ा सा कुछ कर रही हूं, या वो खा नहीं रहा है इसलिए उसको अट्रैक्ट करना है। और जब आप अट्रैक्ट करते हैं और फिर वो खा लेता है बच्चा, तो वो बच्चा क्या खा रहा है ये उसे पता होता है, उस स्वाद को वो क्या महसूस करता है। दूसरी बार उसको पूछ लो, बेटा उस दिन क्या खाया था? तो ये जो डाइवर्जन है वो स्टार्ट कहां से हुआ? कहीं ना कहीं हमने किसी छोटे छोटे रीजन के कारण हमने शुरू कर दिया। दूसरी एक बात है कि ये जो हमारा स्क्रीन टाइम है ये क्या करता है? कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस। हमारी शक्तियां जहां जाती है कहां जाती है? जहां हमारा ध्यान चला गया। तो हम सिर्फ देखते थोड़ी है, हमारा ध्यान उसमें जाता है। देखना एक आंखों से होता है, वो तो दुनिया में बहुत कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन वहां सब जगह हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन जब आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं तब आपका ब्रेन का एक्टिविटी उसके साथ में कनेक्ट हो जाती है, और जैसे ही उसमें कनेक्ट होती है आपका बाकी सारे विषयों से ध्यान हट जाता है। क्योंकि जब कोई चीज विजिबल भी हो, सुनाई भी दे रही हो, और कहीं ना कहीं मेरे जैसी, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे सामने ह्यूमन बीइंग की कोई एक्टिविटी हो रही हो, तो वो जल्दी से मैं उससे कनेक्ट होती हूं। जैसे आपको पता होगा पहले टीवी का एडिक्शन एक माना जाता था, आजकल तो बहुत कम लोग हैं टीवी पर सब देखने वाले, लेकिन एक समय था जब टीवी के बारे में भी ये कहा गया था कि फैमिली कोर्ट में बहुत सारे केसेस जो फैमिली मैटर्स के, जो डाइवोर्स के आने लगे, उसका सर्वे हुआ, तो 1000 केस में से मोर देन 800 केस ऐसे थे जो टीवी सीरियल के कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि जब आप एक धारावाहिक देखते हैं, आजकल भी वेब सीरीज आ रही है, बहुत कुछ आ ही रहा है, वैसे तो कंटेंट तो सब जगह है ना? तो जब आप लगातार किसी पात्र को देखते हैं, फिर उसकी स्टोरी को जानते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के साथ आप उसको मैच करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं ना? अच्छा वो भी आईटी में है, मैं भी आईटी में हूं, अच्छा उसका भी एक बच्चा है, मेरा भी एक बच्चा है। धीरे धीरे हम जैसे कि अपने को उसके साथ मैच करने लगते हैं। फिर अभी वो तो है, कंटेंट चलाना है, स्टोरी चलानी है, ओटीपी, बहुत सारे वहां तो रीजन है, उनको तो कमाना है ना, तो स्टोरी को खींचना है। अब खींचना है तो क्या करना है? स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट लाने पड़ते हैं, और ट्विस्ट लाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर डाल दिया, कोई और एडिक्शन डाल दिया, कोई झगड़ा डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया। अब वहां डला तो यहां भी, वहां एक लड़की का पति बहुत प्यार करता है उसको, लेकिन कुछ दिनों से वो रोज लेट आने लगा घर पे, उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब यहां इसका पति पत्नी की जरूरतों को, डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, और इसके लिए वो घर में लेट आ रहा है। लेकिन क्योंकि पत्नी सीरियल देखकर सोचती है, उसका पति 2 घंटा रोज लेट आने लगा, मेरा पति भी 2 घंटा लेट आने लगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंटर हो गया है ना। घर में हमने किसको बुला लिया, वो बोलते ना आ बैल मुझे मार, अच्छे से आराम से चल रहे थे लेकिन बुला लिया। और फिर शुरू होती है वो शक वाली चीजें, फिर शुरू होते हैं झगड़े, फिर होती अनेक चीजें। और इसलिए ऐसे मैटर फैमिली कोर्ट में तलाक तक पहुंचे और उसके इतने केसेस की स्टडी के बाद ये बात सामने आई कि इन सब की काउंसलिंग में एक ही चीज पाई गई कि वो इससे कनेक्ट थे। अब देखो आप उधार का दर्द ले रहे हम, अरे दुनिया फ्री में बांट रही है और ये फ्री वाला है ना, हमारी इंडियन सोसाइटी में फ्री शब्द का थोड़ा सा आकर्षण बहुत ही ज्यादा है, फ्री के लिए कुछ भी है ना। मैं एक बेटे को बोल रही थी, एक कॉलेज स्टूडेंट था और मैं उसकी काउंसलिंग कर रही थी, तो मैंने देखा वो थोड़ा सोशल टाइम उसका सोशल मीडिया का ज्यादा है। मैंने बोला क्यों बेटा रात को 12 बजे तक जागते हो, तो बोला दीदी 2 GB डाटा फ्री मिलता है ना तो फालतू क्यों जाने दें, और पर डे लिमिट है। मैंने कहा ओ अच्छा, तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला किसी जमाने में तुम घर के फोन से STD कॉल लगाते थे और कहीं बात करते थे, कितना कितना पैसा लगता था, और आज तुम व्हाट्सएप पे कॉल करते हो फ्री में, US में बात कर रहे हो, जापान में बात कर रहे हो, लंदन में बात कर रहे हो, घंटों बात कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है फ्री। पर एक बहुत अच्छी बात याद रखना, व्हेन यू आर नॉट पेइंग फॉर ए प्रोडक्ट यू आर ए प्रोडक्ट। जब किसी चीज के लिए आप पे नहीं करते हो इसका मतलब वो आपको यूज कर रहे हैं, आप स्वयं एक प्रोडक्ट बन गए हैं। और इसका उदाहरण भी ढेर सारा है। एक बार आपने फेसबुक पे कोई एडवर्टाइज देखी, फ्रिज बहुत सुंदर, एक मिक्सी, कुछ भी ड्रेस, और आपने जरा सा सर्च करने के लिए क्लिक कर दिया, नहीं 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 बहुत महंगी है जाने दो मेरे काम की नहीं, छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद अगले 15 दिनों तक नहीं पर 6 महीने तक न केवल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, उसी से संबंधित सारी कंपनियों की एडवर्टाइज आपके फोन में आती है। आता है कोई ना कोई है जिसको पता चल रहा है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है, और ये डेटा कलेक्ट हो रहा है। थोड़े समय के पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक रिपोर्ट आया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी साल की 45 करोड़ डॉलर है, लेकिन उससे बड़ा सौदा एक कंपनी का हुआ और वो था 46 करोड़ या 42 करोड़ में भी, और वो ऐसी कंपनी जो 1 रुपये की भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ऐसी एक कंपनी खरीदी गई, 1 रुपया का भी प्रोडक्शन नहीं होता, फिर भी खरीदा, कौन सा, ट्विटर। क्यों, क्या खरीदा फिर उसने, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही है, कुछ भी नहीं बेचने वाले हैं वो, फिर भी खरीदा है 42 करोड़ डॉलर डेटा। सारी दुनिया के लोग कहां जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, क्या सुनना पसंद करते, किस व्यक्ति को पसंद करते, किस पार्टी को पसंद करते, ये सब कुछ कलेक्ट करने के लिए 42 करोड़ डॉलर को खर्च किया गया एक व्यक्ति एलन मस्क के द्वारा। तो क्या वो बेवकूफ है, ये डेटा कलेक्ट करके वो क्या करेंगे। दूसरा एक शब्द आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा सब कुछ आप कल परसों के लिए क्या सोचे हुए हैं ना वो भी उनको पता है, आप अगले 2 साल के बाद क्या करने वाले सोच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी को पता चल गया है। तो ये कहते थे कि भाई सोशल मीडिया मे बी हैक ह्यूमैनिटी, ऐसा कभी कहा जाता था, लेकिन हम अभी ये कह सकते हैं कि वी आर ऑलरेडी हैक्ड। आज हम सभी कहीं ना कहीं किसी की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसके लिए ये इतने विज्ञापन और इतना फ्री और इतने डाटा और इतना सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बस एक बार आदत डालनी है, फिर तो क्या है, फ्री में दे दो कोई चीज, आदत डाल दो, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो बंदे को कितना भी पैसा खर्च करके वो लेना ही लेना है। तो डिजिटल डिटॉक्स यानी कि इन डिजिटल चीजों से अपने आप को कुछ वक्त के लिए अलग करना, हो सके तो वीकली वन डे, डेली 2 to 3 hours, ऐसे करते धीरे धीरे आप सोशल मीडिया से, मोबाइल से अपने आप को थोड़ा दूर करें। आपको लगेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारा तो, हमें तो मम्मी पापा के साथ बात नहीं होगी 24 घंटा, नो प्रॉब्लम, बाकी ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ साथी है ना, सबसे प्यारा दोस्त है, और इससे आप क्यों हमको दूर कर रहे हो, है ना। नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपको कि आपको क्या करना है, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक बार फैमिली वेकेशन का प्लान हो रहा था किसी घर में, तो बच्चों की डिमांड थी कि भाई हम तभी चलेंगे जब वहां 24 आवर्स वाईफाई मिलेगा, और मां बाप चाहते थे कि बच्चों को कुछ तो नया एक्सपीरियंस कराए, तो एक दूर की जगह पर लेके गए। रास्ते में तो नेटवर्क ही नहीं, बच्चे परेशान, वहां कैसे होगा, रास्ते में तो है ही नहीं नेटवर्क, और इतनी दूर जा रहे अब क्या होगा। जब वहां पहुंचे तो सामने लिखा था वाईफाई, हाँ बच्चे खुश, कहीं भी कैसा भी रूम मिलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे अंदर गए तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो लिखा तो है वाईफाई, फिर नीचे उसका डिटेल लिखा था विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन, दिस इज द वाईफाई जोन। क्या हमारे घर में एक वाईफाई जोन ऐसा होना चाहिए? नहीं तो क्या हो रहा है, कभी होता था छुट्टियों में दादा दादी को, नाना नानी को मिलने जाते थे, कोई गले मिल रहा है, कोई गोद में बैठा है, कोई पांव दबा रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। आज दादी के घर भी चले गए, दादी अकेली बैठी है, बाकी सब हाजिरी भर लिया, एक छत के नीचे बैठे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। इस मोबाइल के एडिक्शन ने हमें अपने आप से भी दूर किया है, हमें अपनों से भी दूर किया है, हमें अपने ब्राइट अतीत से, पास्ट से भी दूर किया है। हमारा जो भारत की संस्कृति थी, भारत के पास जो प्राचीन समय की इतनी अचीवमेंट्स है, हमारी, हमारे देश में कितनी अच्छे पुराने स्थापत्य है, कितनी ऐसी अच्छी चीजें बनी हुई है, जहां इतिहास दिखता है, जहां धर्म दिखता है, जहां विज्ञान दिखता है, ऐसे आविष्कार हुए हैं, हमें उनसे दूर किया है, हमें मैदानी गेम से बच्चों को दूर कर दिया है। आज गेम भी कौन सा अच्छा लग रहा है, मैदान के गेम में बच्चों को धूप में जाना पसंद नहीं, खेल के थकना पसंद नहीं, खेल भी यही पसंद आ गया है, और इसी खेल में खेलते खेलते तो क्या क्या हुआ है वो तो आप सब मेरे से भी ज्यादा अवगत है कि आज तो लेटेस्ट जो हॉट न्यूज चल रही है चक्रवात से पहले की, चक्रवात तो अभी 2 दिन से न्यूज आ गई, उसके पहले की लास्ट हॉट न्यूज क्या थी, ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा धर्मांतरण तक, ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा बच्चों का ब्रेन वॉश तक, यहां तक पहुंच गई है दुनिया। तो हम उस गेम को भूल गए जो हमारी गुल्ली डंडा होते थे, कंचे से खेलते थे, है ना, एक दूसरे के ऊपर से जंप लगाते, क्या बोलते थे उसको, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, किसने खेला है, किस किसने खेला है, लेकिन कितने दिन पहले खेला ये बताओ। बड़ी बात तो ये है कब खेला था वो है और कितना मजा आता था है? जब लास्ट में उसके ऊपर हाथ रख के पूरा कूदते थे और उसको दबा देते थे, वो गिर जाता था, सब बातों में कितना एंजॉयमेंट था है ना। कभी दोनों हाथ ऐसे करके फिर अंदर से वन बाय वन, क्या बोलते हैं उसको, यस यस यस, हर जगह का थोड़ा नाम डिफरेंट होगा। क्या मजा आता था है, क्या ऊर्जा मिलती थी एक दूसरे से। आज क्या है, कहां से ऊर्जा मिल रही है, जितनी इस बॉडी में कुछ अच्छी ऊर्जा है, जितनी इस माइंड में कुछ है, वो भी हम खर्च कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस बहुत आवश्यक हो गई है। आपको पता है साइकोलॉजी में बहुत सी बीमारियां हैं और उसमें की आजकल न्यू बहुत सारी डिजीज के नाम ऐड हुए हैं। नोमोफोबिया सुना है, नो मोबाइल फोबिया, मोबाइल ना होने से होने वाला अजीब टाइप का शरीर में और मन में उत्पन्न होने वाला अवसाद। फिर फोमोफोबिया, फियर ऑफ मोबाइल आउट, फोबोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग ऑफलाइन, इन सब के इफेक्ट्स, और उसकी कोई दवाई नहीं है। काउंसलिंग के बाद भी उसमें से बाहर लाना, हम एज ए काउंसलर जानती हूं मैं, साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके सिवाय जब आप रात को देर तक स्क्रीन के सामने आपकी आंखें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि कई बार नींद नहीं आती, कई बार वही फ्री वाला पूरा करना है, कई बार कोई एक चीज शुरू कर दी तो अब स्टोरी तो पूरी करनी है, मूवी स्टार्ट कर दी तो अभी पूरी करनी है ना। तो वो जो देर तक आपका आंखें और ब्रेन जब एक्टिव रहता है, तो उसके बाद चलो स्टोरी पूरी हुई, आपने बंद कर दिया, लेकिन आपके ब्रेन को लाइट बंद होने के आधा घंटे बाद तक भी प्रॉपर मैसेज नहीं जाता है कि यू आर गोइंग टू स्लीप, क्योंकि नींद के लिए मेलाटोनिन हार्मोन की जरूरत होती है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन जब तक हम निष्क्रिय नहीं होते तब तक उत्पन्न नहीं होता है। अब लास्ट तक तो एक्साइटमेंट होता है और स्टोरी में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है ना। अब वो एक्साइटमेंट में जब आप देख रहे हैं, उसके बाद चलो पूरा हुआ, आप थक भी गए, रख भी दिया, एक बार आपकी आंख लगेगी भी, लेकिन आपका ब्रेन नहीं सो पाता। और आजकल ये ब्रेन के न सो पाने के कारण जो हमें इंटरनली चार्ज होना चाहिए वो हम नहीं हो रहे हैं, और सुबह उठने के बाद, अच्छी नींद के बाद भी आपको फ्रेशनेस का अनुभव नहीं होता। जब भी कोई जगाता है आपको दुश्मन लगता है, जबकि इंसान को सोने का टाइम काफी है। वो जब भगवान से दुआ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, लंबी उम्र हो, सुखी जीवन हो, है ना। किसके लिए लंबी उम्र चाहिए थी, 3x6 की खटी हम पड़े रहने के लिए, जागने के लिए ना। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। अगर जिंदगी से प्यार है तो आपको ज्यादा समय जागना चाहिए कि ज्यादा समय सोना चाहिए, क्योंकि जागेंगे तो कुछ करेंगे, वरना सोया हुआ और एक डेड बॉडी, दोनों में क्या फर्क है बताओ, फर्क क्या। वो भी रिप्लाई नहीं करता, वो भी रिप्लाई नहीं करता, वो भी कुछ नहीं बोलता, ये भी कुछ नहीं बोलता, वो भी नहीं सुनता, ये भी नहीं सुनता, फर्क क्या है, कुछ भी नहीं ना। अगर आप 8 घंटा भी सोते हैं, थोड़ा अपना दिनचर्या याद कर लेना, हर एक का अलग अलग हो सकता है, अगर आप 8 घंटा भी सोते हैं तो आप जिंदगी का 1/3 टाइम तो सिर्फ सोते हैं, 24 आवर्स का डे मिला है, आप 8 घंटा सो लिए, तो 1/3 ऑफ लाइफ आपकी किस में जा रही है? सोने। भगवान ने आपको 60 वर्ष की उम्र दी, 20 साल केवल और केवल आपने क्या किया? और ताज्जुब की बात यह है कि 8 घंटे सोने के बाद भी क्या उठते ही आप एक्टिव होते हैं? उठते ही किसी स्टडी के लिए तैयार होते हैं, किसी काम के लिए तैयार होते हैं, किसी की बात सुनकर अच्छा रिप्लाई करने के लिए तैयार होते हैं? नहीं होते हैं। आप यहां पर देखना, सर्च करना, 3 दिन आपको मिला है। हम लोग रात को 10 से 10:30 के बीच में सोते हैं, वैसे 10 बजे यहाँ पे बंद हो जाता है सब, पर चलो समेटते कुछ भी करते मैक्सिमम 10:30। और सुबह कितने बजे उठते हैं यहाँ सभी लोग? 3:30 बजे। और फिर भी सारा दिन जितने लोगों से आप मिलेंगे, आप ये नोट करना, ये सीक्रेट बात अपने पास रखना, लास्ट दिन आप शेयर करना, सारे लोगों को मिलते समय आपको उनसे कितनी ऊर्जा का अनुभव होता है, उनके चेहरे पर कितना आपको तेज नजर आता है, कितना उनकी बातों में खुशी नजर आती है। वो कोई भी कहीं भी खड़ा होगा वो स्माइल देगा आपको, चाहे आप उसको जानते हैं चाहे आप उसको नहीं जानते। लेकिन दुनिया में तो क्या हो गया है, लोग स्माइल करना भूलते जा रहे। हाँ, ऐसे तो कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अवर बर्थ राइट, और कुछ समय से आपको पता होगा हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हो रहा है। दुनिया के 156 या 180 कंट्रीज के वो एक लिस्ट निकालते हैं कि कौन सी कंट्रीज है हैप्पीएस्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, है ना। तो 2015 में ये शुरू हुआ था। 2015 में जो पहली हैप्पीनेस इंडेक्स बनी थी उसमें भारत का नंबर 118 आया था, और अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान सब हमारे से आगे थे, हम 118वें नंबर पे थे। और द फर्स्ट द हैप्पीएस्ट कंट्री फर्स्ट हैप्पीनेस इंडेक्स में डिक्लेयर हुआ था कौन सा? भूटान। आज भी यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को के सभी प्रोग्राम्स में भूटान को इनविटेशन मिलता है, और भूटान की विजिट के लिए अच्छे अच्छे लोग पहुंचते हैं, जो इतनी सी कंट्री है भारत के पड़ोस में। और जब दूसरी लिस्ट जारी हुई, तीसरी लिस्ट जारी हुई, तो भारत के क्रम में कमी आती गई, और जो लेटेस्ट 2022 की रिजल्ट आई है, हैप्पीनेस इंडेक्स लिस्ट आई है, उसमें भारत 136 रैंक पे आया है। 126 या 136, वो आप देख लेना। हाँ, आप सोचो 18 से भी हम कहां जा रहे हैं, तो ये हैप्पीनेस जाती कहां है? सोचिए, क्या हमारे देश में हम भूखे मर रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही है? क्या बहुत आतंकवादी हमले हो रहे हैं? क्या हम इनसिक्योर हैं? क्या हमारे पास घर चलाने की प्रॉब्लम है? हम सभी जो यहां बैठे, अपने आप को ही खाली देख लीजिए कि जो जीवन की आवश्यक चीजें हैं, क्या आप हम सबके पास नहीं है? है? इसीलिए कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ी भावना है। जो आपको मिला है उसके लिए आपने उस देने वाले का, उस भाग्य विधाता का थैंक्स किया। अगर आपके पास 2 आंखें हैं, देख पा रहे हैं, तो दुनिया के 40-50 करोड़ लोगों से ज्यादा आप भाग्यशाली है, क्योंकि दुनिया में उतने लोग ब्लाइंड है। दिन में एक बार ही सही बैठ करके उस खुदा ईश्वर भगवान का थैंक्स तो करें कि मुझे ये 2 आंखें तो दी है, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, मुझे रेड कलर क्या है पता है, मुझे ब्लैक किसको कहते पता है, व्हाइट किसको कहते पता है। वरना एक ब्लाइंड के सामने आप रखो आम, दिखा के बोलो देखो आम कितना सुंदर कलर है, ऑरेंज कलर आया है, बेचारे को क्या पता चलेगा। हमें दो पांव है, हमें दो कान है, हम सुन पाते, कितनी सारी चीजें हैं जो बेसिक है जीवन के लिए, वो तो हमारे पास है। तो हैप्पीनेस क्यों जा रही है? क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि हमारे ब्रेन में क्या डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए। अच्छा, क्या होता है अमूमन कि रात को सोते समय कोई अच्छी सी, आज घूम के आए थे, फोटोज बढ़िया थी, तो क्या किया, उसको पोस्ट किया, हाँ, फेसबुक पे अपलोड कर दिया, इंस्टा पे डाला, सो गए। सवेरे उठते ही पहला ख्याल क्या आता है, किस किस ने, कितनों ने लाइक किया, क्या कमेंट्स डाली। और मान लीजिए आपके अजीज दोस्त ने आपकी पोस्ट को ऑनलाइन होते हुए भी, संडे होते हुए भी, न तो देखी न तो लाइक किया, कैसे दिन की शुरुआत होती है फिर? आने दो, मिलने दो। कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो तनाव उत्पन्न करता है, और सुबह उठते ही जब हम इस तरह का चिंतन करते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं, हम किसी चीज के साथ में नाराज हो जाते हैं, तो वो जो शुरुआत होती है वो कार्टिसोल हार्मोन उत्पन्न करती है, और वो सवेरे के लिए सबसे खराब है जो तनाव के साथ दिन की शुरुआत कराता है। और जब शुरुआत ही तनाव के साथ होगी तो उस दिन को आप हैप्पी कैसे स्पेंड करेंगे, सोचिएगा। तो आजकल ये हो रहा है, एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, किसी कारण से वो बच गया, तो उसका इंटरव्यू लिया, तो उसने कारण बताया कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया। और आपको पता होगा भारत में हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। अपना ये लेक्चर पूरा होगा ना तब तक सैकड़ों नहीं हजारों लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होंगे, भले कुछ बच जाते हैं कुछ चले जाते हैं। उसको पूछा तो कारण क्या बताया कि मैंने अपने एक फ्रेंड को फेसबुक पर देखा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, 3 दिन तक इंतजार किया, उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, सो आई एम गोइंग टू डेट। सोचिए कैसे रिश्ते हैं हमारे, रिश्तों में हम क्या चाहने लगे, ये सोशल मीडिया हमारा रिश्ता जोड़ेगा, ये सही रिश्ते हैं? और फिर बाद में कई बार तो पता चलता है कि पिंकी नाम से जो मेरे साथ में व्हाट्सएप में फेसबुक में काम कर रही थी, वो बाद में निकलता है कोई 60 साल का बुढ़ा, ये भी सब आप जानते हैं अच्छी तरह से, और वो बढ़िया पिंकी बनके और बढ़िया सा प्रोफाइल फोटो लगा के आपके साथ सब प्रकार की चैट कर लेते हैं। ये कैसी दुनिया है ना? बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, लेकिन इन कहानियों से मतलब नहीं है। आज आप ऐसी जगह पर आए हैं जहां शायद आपका मोबाइल में नेटवर्क न भी मिल रहा हो। किस किस के मोबाइल में नेटवर्क कम मिल रहा है? यू आर वेरी हैप्पी। अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कम से कम आप यहां की चीजों को गौर से देखेंगे। कितने प्रकार के पौधे, आपको पता है ज्ञान सरोवर में 10,000 प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, और वो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लान है यहां पे, और वो कैसा है कि जितना भी पानी यूज हो रहा है तो वो सारे पानी को रिट्रीट करके और उन पौधों को सिंचाई हो जाती है, और इसलिए एक बहुत बड़ा उदाहरण एनवायरमेंट फ्रेंडली का यहां पर आपको मिलेगा। और वो फलों के पौधे हैं, आपको जो फल कश्मीर में मिलेंगे, जो फल शिमला में मिलेंगे, वो राजस्थान की इस पहाड़ी पर भी मिलते हैं और ज्ञान सरोवर में मिलते हैं, इतनी मेहनत की गई है। और जब ये ज्ञान सरोवर बना है तो बीच में जितने भी पुराने पेड़ थे वो एक भी काटे नहीं गए। आप देखो यहाँ की बिल्डिंग, चाहे बिल्डिंग का शेप टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा नीचा है, पर पुराने कोई भी पेड़ या किसी भी पहाड़ी को काटा नहीं गया है। इतना उदाहरण आपको शायद ही कहीं इंडिया में मिलेगा। आप ऐसी ऐसी चीजें यहाँ की देख के जाना। मोबाइल के फ्रेंड्स कहीं नहीं जाएंगे, सोशल मीडिया में चार दिन आप ऑफलाइन रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कभी कोई अच्छी चीज भले आप शेयर करो, मना नहीं है। डिजिटल डिटॉक्स के लिए जरूरत एक ही चीज की है, जो पहली बात कही आपको, अवेयरनेस, और दूसरा कि स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करने के लिए आपके पास दूसरी कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल हम किताबें पढ़ना बिल्कुल भूल गए हैं, और किसी ने लिखा था कि जब किताबें रोड के किनारे और जूते शोकेस में मिलेंगे तब समझ लेना कि लोग भी ऐसे ही है कि जिनका ज्ञान तो अब रोड पे है और उनका मतलब उनका जूते खाने का टाइम आ गया है। तो आज क्या हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया सब यूज की चीजें कहां मिलती है, मॉल में और शोकेस में रखी हुई, एयर कंडीशन शोरूम में, और किताबें बेचारा वो प्लेटफॉर्म पे, आजकल तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत कम हो गई किताबें, क्योंकि वो सवेरे से शाम तक ठेला चलाता है लेकिन कोई खरीदता नहीं है। तो हम अच्छी किताबें पढ़ें, और अच्छे लेखकों के आप भाव को सुने, पढ़ें। दूसरी बात, आप अच्छा म्यूजिक, नॉट फिल्मी म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, लेकिन जिस म्यूजिक के साथ कोई अच्छे भाव के शब्द भी हो, कभी आप उसमें थोड़ा सा समय दें। अच्छा, इनमें से कितने लोग हैं जिनको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है? 1, 2। देखो, आपको पता होगा भारत में पहले गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में मोर देन 60 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और वो कब थे गुरुकुल? 18वीं शताब्दी से थे, जब इंग्लैंड में एक भी प्राइमरी स्कूल भी नहीं खुला था, तब की बात है ये। और उसमें वाद्य, संगीत, गायन, सारी चीजें सिखाई जाती थी, योग विद्या। और एक बार गुरुकुल से पढ़ के जो बच्चा निकलता था वो पूरी तरह से कोई ना कोई काम करने के लिए तैयार होता था, उसको सर्टिफिकेट डिग्री लेके कहीं कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाना नहीं पड़ता था, कोई ना कोई हुनर सीख के निकलता था। तो हमें कोई ना कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का सीखना चाहिए, कभी गायन पे हाथ अजमाना चाहिए, कभी लेखन पे अजमाना चाहिए, कभी शायरी बनाने में अजमाना चाहिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आज हम कई चीजें बिल्कुल छोड़ चुके हैं। आप अच्छी ड्राइंग बनाइए, क्राफ्ट बनाइए, आप मड से कुछ आर्ट बनाइए, आप अच्छी रंगोली बनाइए, रोज घर के सामने छोटी सी रंगोली बनाइए। कभी हमारी परंपरा थी कि भाई सूरज नारायण रोज सवेरे हमारे द्वार पर दस्तक देते हैं, हमारे घर के सामने रंगोली होनी चाहिए। चावल के आटे से बनती थी, रंगों से बनती थी, और आज क्या हो रहा है, दूध वाला आके जगाता है, फिर भी कई बार तो दूध लेके भी। तो हमें उठना कब चाहिए? हाँ, मैं हैप्पीनेस की बात कर रही थी। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जब जारी हुआ तो उसके साथ एक ये भी सर्वे हुआ कि दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट मैन कौन। तो एक व्यक्ति जिसका नाम फर्स्ट लिस्ट में निकला, मैथ्यू रिकार्ड, जो फ्रांस का रहने वाला है, और उसको डिक्लेयर किया गया द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और उसको जब पूछा गया, उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उसके सर्वे में ये पाया गया था कि वो 27 साल में कभी भी उदास नहीं हुआ था। 27 वर्षों में केवल एक बार थोड़ा सा दुखी हुआ था, और वो कब? जब उनके गुरु का देहांत हुआ था। और उनके गुरु कौन थे? हिमालय में रहने वाले एक इंडियन थे, ठीक है। उनको पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस, कैसे आप हैप्पी रहते, खुश रहते, हम तो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जो है रोज सवेरे उगते हुए सूरज को 20 मिनट तक देखता हूं, 20 मिनट तक उगते हुए सूरज को देखने के लिए मैं पहले से रेडी रहता हूं। एक चीज, हमारे पूर्वज क्या कहते थे, क्या कहते थे, उगते सूरज को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, है ना, अर्घ्य देना चाहिए। आज भी कितने सारे व्रत है, खास करके जो छठ पूजा होती है और भी कई, जिसमें तीन तीन दिन तक वो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो 20 मिनट तक कोई भी पीली चीज का ध्यान लगाना हैप्पीनेस के लिए दी बेस्ट है। आप सबको पता होगा, सभी स्कूल गए हैं ना, स्कूल बस का कलर क्या होता है, कभी सोचा व्हाई ओनली येलो? अच्छा, आप फेसबुक पे और सब यूट्यूब पे स्माइलीज यूज करते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ स्माइलीज, येलो। ये सब हैप्पीनेस के लिए स्टार्ट हुआ था, तो येलो इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस। यहां भी जब आपको ये लाइट शुरू होती है, बीच में ज्योति बिंदु दिखता है, येलो लाइट, आपको अपनी आंखें भी और अपने ब्रेन को भी शांत करके सामने एकाग्रता से वो दृष्टि लेते हुए आंखें खोल के मेडिटेशन करना है। आपको 2-3 दिन के सेशन में आपको सब सिखाया जाएगा कि मेडिटेशन कैसे करना है, जो यहां का सहज राजयोग है, बहुत सहज है, बहुत सहज। आराम से इसी अच्छी कुर्सी पर बैठ के आप कर सकते हो, नीचे बैठ सकते हो तो नीचे बैठो, कोई जरूरी नहीं है कहां पे भी बैठ सकते हो। तो उसने ये बताया एक बात। दूसरी बात उसने बताई कि रोज सुबह मैं अपने आप से बात करता हूं। क्या करता हूं कि दो ऑप्शन मेरे सामने है। फर्स्ट ऑप्शन, मुझे खुश रहना है सारा दिन। दूसरा ऑप्शन, लोग चाहेंगे वैसे चलूंगा। और पता है, लोगों को पता होता है आपका मूड किस किस तरह से ऑफ होता है, वो ट्रिगर सब जानते हैं। कई लोग दूसरों के लिए बोलते हैं, इसका मूड खराब करना है अभी करता हूं, इसको गुस्सा दिलाना है अभी करता हूं। हमारे लिए दूसरे लोग ट्रिगर दबाते हैं। अब बताऊं, क्या मैंने अपनी खुशी का रिमोट किसी और को तो नहीं दे रखा? आपकी खुशी आपके पास है, चेक करो जरा आंख बंद करके, मेरी खुशी मेरे पास है, मेरे अंडर में है, जब चाहिए जितना समय चाहिए मैं खुश रहूं, या कोई एक आए ट्रिगर दबाए तुरंत मेरे चेहरे की डिजाइन बदल जाती है? ऐसा तो नहीं होता, चेक करो। तो आपको खुश रहने के लिए अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखना है, और वो है खुद से बात करना और खुद को प्रोग्राम देना। देखो, हमारा जो मन है ना, वो बच्चे की तरह है। बच्चे को आप कुछ भी काम नहीं दोगे और ऐसे ही कर, ठीक है बेटा इधर खेलो, तो वो क्या करेगा, सब चीज को देखेगा, छेड़ेगा, कुछ तोड़ भी देगा, कुछ खोल देगा, कुछ गिरा देगा, है ना। लेकिन आप कुछ अच्छी सी चीज उसके हाथ में दे दो, बेटा इससे खेलो, तो क्या करेगा, वो उसमें कुछ न कुछ क्रिएटिव भी करेगा, अच्छा करेगा, है ना। अच्छा, कोई चीज को आप ना बोल दो, बेटा यही खेलना, वो जो दरवाजा है ना उसके बाहर देखना भी मत, अब क्या होगा, अब वो इधर कुछ नहीं करेगा, अब उसका ध्यान जाएगा कि उसके पार है क्या। ठीक है, तो आपको भी अपने मन के साथ में क्या करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे रोना नहीं है, वही करेगा मन, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल, मुझे खुश ही रहना है, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं, मेरा दिन आज का बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी जगह पे हूं और मैं मोस्ट पावरफुल बन रहा हूं, ये कमांड देनी है। खुद से बात करो तब। ज्यादातर लोग खुद से बात करते तो कैसे करते हैं? क्या है, किस्मत कैसी है, अभी तक तो अच्छी गाड़ी भी नहीं है, घर नहीं बना, बढ़िया जॉब नहीं लगी, मनपसंद का डिपार्टमेंट नहीं मिला, बॉस भी ऐसा ही है, पड़ोसी भी ऐसा ही है, दोस्त भी ऐसे ही है, मम्मी पापा ने क्या किया मेरे लिए, क्यों मेरा जन्म यहाँ हुआ, क्यों मेरे को ये नहीं मिला, मैं इंजीनियरिंग में क्यों गया, कोई बोलता है मैं मेडिकल लाइन में क्यों गया, कोई बोलता मैंने बिजनेस क्यों किया, जो है उसमें सब में शिकायत 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 शिकायत, और वही बातें खुद से कर रहे हैं, तो क्या होगा? फिर वो ध्यान आपका कहीं और जाएगा, क्योंकि उसमें तो मजा आने वाला नहीं है। आप जो आज कर रहे हो, आज आपने जो पाया है और आप आज जहां पर भी है, वो दी बेस्ट आपके लिए बनी हुई चीज है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था। और आप जहां है वही आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोप है, वरना होता ही नहीं। लेकिन हम कंपेयर नहीं करते हैं। हम किससे कंपेयर करेंगे? अंबानी से। अब जरूर तो लॉ फील करेंगे ही ना, सबको थोड़ी एंटीलिया मिलने वाला है। तो किससे करना है कंपेयर? अरे कितने लोग हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, देखिए तो। और आप यहां पहुंचे हैं, कितने लोग हैं जो यहां आने वाला, रजिस्ट्रेशन कराया, सब कुछ तड़प रहे हैं, वो भी नहीं पहुंचे। और कई ऐसे होंगे जिनका कल परसों तक कुछ फिक्स नहीं था और कल अचानक आ गए। तो क्यों आए पता है? क्योंकि भगवान ने आपको याद किया, बेटा आओ और शक्ति भर के जाओ। आप आए हैं, आप अच्छी जगह पर आए हैं, आप मोस्ट लकी है। बस अब उस लक को आपको चार्ज करना है, आगे बढ़ाना है। तो क्या करना है? इस डिजिटल वर्ल्ड से, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट से, इनर नेट में आओ। आजकल एक शब्द है ना भाई, वेलनेस। वेलनेस कैसे आए जीवन में, है ना? वेलनेस है नहीं, इलनेस बढ़ रही है ना? तो हम एक ही शब्द में आपको बताते हैं, इलनेस टू वेलनेस का सफर करना है तो आई को वी में बदल दो। आई मीन्स ईगो, कहते हैं ना आई इज ऑलवेज कैपिटल, सेंटेंस में बीच में भी आएगा तो भी कैपिटल। तो हमेशा इंसान का ईगो क्या है? हाई रहता है। और ईगो को ही सेटिस्फाइड करने के लिए वो न जाने क्या क्या करता है, फिल्टर लगा के फोटो खींचते, किस लिए? ईगो सेटिस्फाइड करना है। न जाने कितने ही पदार्थ यूज करते शरीर के लिए, खाने के लिए, दिखाने के लिए, ईगो सेटिस्फाइड करना है। और ईगो ही क्या कर रहा है? ईगो ही आज सब के बीच में दीवारें खड़ी कर रहा है, और वो दीवारें एक को दूसरे से दूर कर रही है। अरे दुनिया में आप कुछ भी अचीव कर लोगे, बहुत बड़े बन जाओगे, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होगा, आपको एप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं होगा, क्या फायदा? क्या फायदा? आप सबसे तो डिस्कनेक्ट हो रहे हो, और कुछ बन भी गए तो कोई ताली बजाने वाला भी नहीं होगा। लोगों से जुड़िए, वी कॉन्सेप्ट लाइए, आई कॉन्सेप्ट को खत्म कीजिए, वी कॉन्सेप्ट, टुगेदरनेस का कॉन्सेप्ट, सेल्फिश वाला कॉन्सेप्ट को कम कीजिए। तो इससे आप अपने इनर नेट को पहचान सकेंगे। देखिए लॉकडाउन हो गया था, है ना, आउटर वर्ल्ड में जाना बंद हो गया था, लेकिन इनर वर्ल्ड हमारा, बहुत लोगों ने उसको बहुत महसूस किया, अच्छा अनुभव किया। हम लोगों ने पूरा एक डेढ़ साल जो बंद रहा, तो हमने इतने सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किए, जिसमें हमने अपनी आध्यात्मिक चेतना को आगे बढ़ाया। तो कुछ मेरे पास होना भी तो चाहिए ना, जिससे मैं अपने अंदर जाऊं। आज वो है नहीं। फिर ये बातें हो रही है कि लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम न स्टडी कर रहे हैं, न उसमें महसूस कर रहे हैं, और केवल हम बाह्य दिखावे में आज दुनिया चली गई है। तो डिजिटल डिटॉक्स के लिए हम यही कहेंगे कि आप अपने अंदर शक्ति का, खुशी का, शांति का इतना अच्छा खजाना भरिए, जो खजाना आप बांटने के लिए दुनिया में आए हैं ऐसे बनना। अभी तक हम क्या है पता है, सब जगह से ढूंढ रहे हैं, जैसे कि भीख मांग रहे हैं। हमारे पूर्वज क्या थे? हमारे पूर्वज कौन थे पता है? भारत में सतयुग था। सतयुग में कैसे लोग थे? देवी देवता। आज भी देखो उनके मंदिर बने हुए, वो उनकी मूर्तियां कैसी होती है, देने वाली है ना। लक्ष्मी जी का होता है तो वो भी दे रही है ना। और आज व्यक्ति क्या हो गया? लेने वाला हो गया। इससे मैं क्यों बात करूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं क्यों स्माइल दूं, इससे मुझे क्या मिलेगा। हर जगह क्या करता है वो, स्माइल करने में भी सोचता है कि जीएसटी लग जाएगा। कहीं लगता है क्या, कोई कंट्री ने टैक्स लगाया क्या मुस्कुराने पर? तो आप भी सब मुस्कुराइए। आपकी एग्जाम थोड़ी हो रही है, एग्जाम थोड़ी है हमारी का, इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है ना। तो खुश रहिए, नहीं तो किसी ने कहा है कि 2050 में अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो 2050 में अगर रोड पे कोई मुस्कुराता हुआ मिल गया तो लोग उसको पकड़ के म्यूजियम में बिठा देंगे कि भाई सैंपल रख लो, एक बचा है। कभी ऐसे थे कोई शायद, है ना, क्योंकि हम सब मशीन जैसे होते जा रहे, मशीन को यूज करते करते मशीन जैसे होते जा रहे। आजकल कोई दिवाली पर घर पे विश करने आ जाए ना, तो लोग ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते जैसे, क्यों, नेटवर्क नहीं था क्या, मतलब ये क्यों कर रहे हो घर पे आनंद जानन। पहले कितनी खुशी होती थी, नए कपड़े पहनेंगे और विश करने जाएंगे न्यू ईयर, है उनके घर की मिठाई खाएंगे, अपने घर की मिठाई उनको देके आएंगे, एक अलग ऊर्जा थी। और आजकल हमने सब कुछ, इसलिए कहते हैं कि ई कॉमर्स, ई मेल, ई मार्केट में ईश्वर भी गुम हो गया और इस जीवन की खुशियां भी गुम हो गई। तो अब रिटर्न होना है, और रिटर्न होने का ही नाम है ये हमारी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का स्वाद, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमारी तरह वाइट ड्रेस पहनना है और यहां पर रह जाना है या आश्रम में समर्पित हो जाना है, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेल्फ से कनेक्ट होना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है गॉड को, गॉड की शक्तियों को रिसीव करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सारी दुनिया में हैप्पीनेस बिखेरना, न कि हैप्पीनेस मांगना। आज तक हम जो मांग रहे हैं अब हमें वो देने वाला बनना है। कितना अच्छा है, कोई सामान आप दुकान से खरीद रहे थे आज तक और वो उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने का ठेका मिल गया, तो कितनी अच्छी बात है। तो यहां हम क्यों आए हैं, जो चीजें हम मांग रहे थे वो चीजें हम अब दुनिया को देंगे। और जब हम देने वाले बनते हैं ना, तो हमें कोई चिंता नहीं होती। चिंता किस में होती है? मांगने में। शर्म किस में होती है? मांगने में। दुख किस में होता है? लेने में। देने में तो खुशियां ही खुशियां होती है। जब आप किसी को छोटा सा भी गिफ्ट देते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो मुझे आज से अपने जीवन में सबको खुशी देनी है, सबको इन्फॉर्मेशन बांटनी है, सबको शक्ति देनी है, लेकिन मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर किसी से कुछ चाहिए नहीं तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। जब तक चाहिए, लाइकिंग चाहिए, कमेंट चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, कुछ भी, तब तक दुख रहेगा। जब इच्छा नहीं रहेगी तो कोई दुख नहीं। तो पसंद है सबको, पसंद है। अच्छा तो चलो फिर से हम जो पहले की थी वो एक्सरसाइज करेंगे, और मैं जो बोलूंगी आप, मैं जहां अपना नाम बोलूंगी आप अपना नाम बोलेंगे, ठीक है। राइट हैंड को ऊपर कीजिए। परमात्मा जो कि सारी शक्तियों, अभी नहीं मैं बोलूंगी ठीक है, पहले महसूस क्या करना है बता रही हूं। परमात्मा सारी शक्तियों के स्रोत है, और उस स्रोत से जैसे सूर्य की तरह है, मेरे अंदर वो सारी शक्तियां, गुण, शांति, खुशी सब आ रहे हैं, और उन सब को मेरे इस हाथ के अंदर मैंने भर लिया, भले एक मुट्ठी एक बार भर ले। कॉस्मोस की सारी एनर्जी को एक थॉट से मैं अपने अंदर भर रही हूं। अब धीरे से पीछे लेंगे, अब मैं जो बोलती जाऊंगी आप भी बोलेंगे लेकिन अपने नाम से। वाह गीता वाह, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारी लाइफ कितनी वंडरफुल है, तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, तुम्हारे जैसा तो कोई और है ही नहीं, तुम जितना चाहो आगे बढ़ सकते हो, आज तुम्हें कोई नहीं जानता, एक दिन आएगा सारा विश्व तुमको सैल्यूट करेगा। आई लव यू गीता। तो जब भी कभी लॉ फील करें, अकेले में बाथरूम में चले जाएं, बेडरूम में मिरर के सामने खड़े हो जाएं और खुद को खुद ही क्या कर लें, अप्रिशिएट करें। इंतजार न करें कि कोई आएगा फरिश्ता वो मुझे खुशी देगा, आज किसी का तो फोन आएगा मुझे बढ़िया कुछ बोलेगा, किसी का तो अच्छा मैसेज आएगा। अरे भिखारी क्या बनना है, आज मैं 50 लोगों को खुशी का मैसेज भेजूंगी, मैं 100 लोगों को पॉजिटिव मैसेज भेजूंगी, और वो भी वो रटा रटा या फॉरवर्ड मारने का नहीं, जैसे रोज सवेरे लोग गुड मॉर्निंग ने पता नहीं कितना बम्बारमेंट कर देते, पढ़ते भी नहीं है, सीधा फॉरवर्ड नियम बना लिया है बस, किसी हर एक की स्क्रीन पे मेरा नाम आना चाहिए, ऐसा नहीं। दिल से कुछ अच्छी चीज किसी के साथ शेयर करो, मैंने आज अच्छा फील किया, आप भी कर सकते हो, आप भी बहुत अच्छे हो, किसी का गुण देखो, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है उसको देखो, और देखो जो देते हैं वो मिलता है, ये तो लॉ है। तो जब मुझे पता है कि मैं जो दूंगी वो मुझे मिलेगा, तो जो चाहिए वही बांटते रहो। तो मुझे क्या चाहिए, खुशी, वही बांटो, मुझे प्यार अच्छा लगता है प्यार बांटो, मुझे खाना अच्छा लगता है खाना बांटो, देखो आपको खाना भी बढ़िया मिलेगा, जो दूसरे को अच्छा खाना बना के खिलाता है उसको जिंदगी भर खाना अच्छा मिलता है। जो भी इस लॉ को समझ लो। तो आज हम इस सेशन में विशेष Y20 के अंतर्गत मिले हैं, तो थोड़ा सा Y20 की बात भी आपको सुनाते हैं, शाम को उद्घाटन में भी कुछ शेयरिंग होगा। तो G20 जो विश्व के 46 कंट्रीज का एक समूह है, वैसे तो G20 माना 20, लेकिन 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन जिसका यूके प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके अंतर्गत 27 कंट्रीज आते हैं, माना ये 27 प्लस 19 तो 46 कंट्री का ये एक ग्रुप है जिसको बोलते G20, और एक साल के लिए भारत को उसकी प्रेसिडेंसी मिली है, और लास्ट ईयर भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग जी ठाकुर वहाँ हमारे नॉर्दर्न जोन के कैंपस ओआरसी दिल्ली में आए थे, और उन्होंने जब ब्रह्मा कुमारी इसकी सब एक्टिविटीज को देखा कि आज जो भी कार्य कर रहे हैं वो कितना नेटवर्क बड़ा है, कितना अच्छा निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो G20 के अंतर्गत Y20 प्रोजेक्ट जो विशेष युवाओं के लिए बना है उनका उन्होंने विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा कुमारीज को दी है, जिसमें युवाओं के लिए हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ ये थीम बनाया हुआ है। और वैसे आप सबको पता है G20 का भी थीम है वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत का मूलभूत सिद्धांत है कि हम सारे विश्व को क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं। दुनिया में तो सब लोग एक दूसरे के कंपटीशन में आ जाते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति ने हमेशा सबका वेलकम किया, सबको शरण दिया, सब धर्मों को भी यहाँ पर स्थान मिला है, सब के कल्चर को भी हम वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का मोटो है। तो Y20 के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा मोर देन 300 प्रोग्राम इस जनवरी से अगस्त तक में चलाई जाने हैं। तो 150 जितने प्रोग्राम्स तो शायद हो चुके हैं, एग्जैक्ट मेरे पास अभी फिगर नहीं है, और ये प्रोग्राम भी उसी के अंतर्गत स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट आज आपके लिए रखा गया है। तो आर यू एंजॉइंग, सब लोग अच्छे हैं, रूम अच्छा मिला है, नाश्ता अच्छा मिला, अच्छा। तो देखिए इस वेदर में आप सभी का आना और उसमें इतनी अच्छी बातें, तो हम सभी को जो मिल रही है ना, इसका आपको लाइफ टाइम अपने ऊपर इम्पैक्ट दिखाई देगा। और जितना अटेंटिवली अवेयरनेस के साथ आप हर सेशन को टाइमली पहुंचकर अटेंड करेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और साथ में वो लाइफ टाइम आपको काम आएगा। तो आप सभी अलग अलग फील्ड से आए हैं, अभी हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर कृति दीदी है वो भी अभी आ रही है, तो हम लोग आप लोगों का भी कुछ परिचय लेंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, क्योंकि आज साइड सीन में तो वैसे ही जा नहीं सकते, मौसम बाहर का खराब है, तो ऐसे में फिसलन भी होती है, और माउंट आबू तो पहाड़ी इलाका है तो यहाँ मना किया गया है प्रशासन की तरफ से, बहुत कम जरूरत वाली ही कोई गाड़ियां चल रही है। लेकिन आप कितनी अच्छी जगह है, घर में होते तो क्या करते, टेलीविजन पे खबरें देखते कि कहाँ पर कितना तूफान पहुंचा, क्या हुआ। और आपको बता दे तूफान भी थोड़ा शांत हो गया है और धीरे धीरे सारी परिस्थितियां कंट्रोल में है, बहुत अच्छी तैयारियां भी थी और अच्छा ही मैनेज किया जा रहा है। तो लेकिन फिर भी हम लोग जो लोग भी जहां पे भी तूफान में अटके हैं, हम यहां बैठे हैं, तो रोज आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करेंगे या हर सेशन में भी आपको मेडिटेशन कराया जाएगा, तो एक मिनट उनके लिए भी मेडिटेशन करना। किन के लिए, जो लोग तूफान में, किसी का घर टूट गया है, कोई बिछड़ गया है, कोई पेन में है, कोई इंजर्ड हो गया, कोई कैजुअल्टी हो गई, किसके फैमिली मेंबर्स कोई चले गए, तो उन सब के लिए भी आप जरूर करेंगे। और आज ही फिजी में भी एक बहुत भारी भूकंप भी आया है, तो देखो ये प्रकृति चारों तरफ से हलचल का नजारा दिखाई दे रहा है, और प्रकृति का पति परमात्मा है, हम तो उनकी शरण में बैठे हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी चीजों को अपने अंदर भरना है। और ये जो हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा है उसको आप यहाँ अच्छी तरह समझ के जाएंगे। अच्छा, इनमें से कौन कौन है जो टीचिंग से जुड़ेंगे, एक दो टीचर है, तीन चार, ओके। स्टूडेंट्स कितने हैं, कहीं ना कहीं कोई भी लेवल के, हाँ ओके, अधिकतर स्टूडेंट्स हैं। बिजनेस वाले कौन कौन है, अच्छा कुछ लोग बिजनेस वाले भी हैं, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम कितने लोग आए यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आए माउंट आबू ज्ञान सरोवर में, माउंट आबू भले देखा होगा पर ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान सरोवर में, ओके। तो ये जो स्थान है ये लगभग 36 एकड़ में बना है और माउंट आबू में ही पहाड़ी पर झील बनी हुई है, एक नक्की झील। ये बहुत कम जगह पहाड़ियों पर इतनी बड़ी झील होती है, तो ये बहुत ही सुंदर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और बहुत सात्विक जगह है। पुराणों में भी ब्रह्मा की तपस्या स्थली मानी गई और यहाँ ही एक बड़ा यज्ञ हुआ था जिस यज्ञ को देवताओं ने किया था और उसमें से चार कुल प्रकट हुए थे जो राजस्थान में अलग अलग राजपूताने बने हैं, तो वो यहाँ से ही प्रकट हुए थे। और आपको एक और बात बता दें, स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी माउंट आबू में बहुत समय बिताया था और जिस टाइम उनको अमेरिका का निमंत्रण मिला था, जो उनकी बहुत ही यादगार ट्रिप हुई जिसके कारण ही उनका नाम इतना वर्ल्ड में फेमस हुआ, वो निमंत्रण भी वो जब माउंट आबू में तपस्या कर रहे थे तभी यहाँ ही मिला था उनको। वो एक पहाड़ी पर बैठे थे और अलवर के जो राजा थे उनके मंत्री यहाँ पर घूम रहे थे, तो उनकी नजर गई, उनसे बातचीत हुई, फिर उन्होंने देखा कि ये कितने महान सन्यासी है और उन्हीं की हेल्प से फिर वो अमेरिका जा पाए थे। तो ये ऐसी भूमि है कि जहाँ पर ऋषि भी आए, महर्षि भी आए, और यहाँ पर आबू रोड में आप जाते हैं तो वहाँ पे वशिष्ठ आश्रम भी है, यहाँ नजदीक में अम्बा जी भी है, तो वो अम्बा माता का भी बहुत सुंदर, गुजरात का सबसे बड़ा मंदिर है वो भी है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ सालों से बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन रहे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसका भी ये हेडक्वार्टर जब पाकिस्तान में शुरू हुआ था, पाकिस्तान तो नहीं था उस वक्त, तो भारत ही था, तो हैदराबाद सिंध में, लेकिन उसके बाद शिफ्ट हुआ भारत में क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो इसलिए वहां पर तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी का स्प्रेड होना मुश्किल था, तो इसलिए तब से माउंट आबू ही हेडक्वार्टर बना है। तो तभी से यहाँ पूरे साल भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं जो स्पेशली ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर के इन प्रोग्राम्स में आते हैं एज ए गेस्ट। बाकी तो माउंट आबू में तो लाखों लोग हर महीने आते हैं। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स के कई कैंपस बने हुए हैं, हॉस्पिटल भी है और सभी कैंपस में अलग अलग रहने की व्यवस्था है। इस कैंपस में भी 800 लोगों तक की रहने की व्यवस्था है, तो कुछ 150-200 तो परमानेंट रहते हैं, बाकी 600 जितने हर ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स गेस्ट के रूप में आते हैं। जो हॉल है जहां पर आपका प्रोग्राम चलेगा तो बहुत ही सुंदर है, हारमनी हॉल ऑडिटोरियम बना हुआ है, उसमें 1700-1800 की कैपेसिटी है सीट्स की और उसमें ही आपके सारे प्रोग्राम चलेंगे भी। और ये जो कैंपस है जहाँ अभी बैठे हो, यहाँ अलग अलग सेमिनार हॉल है ये सारे, क्योंकि अभी सारे लोग नहीं आए हैं ना, सिर्फ छोटे हॉल में आपको बिठाया है, बाकी बड़े हॉल में प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग साइज के छोटे बड़े 10-12 हॉल है जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग और सेमिनार कॉन्फ्रेंस आदि चलती है साल भर ये सारा कैंपस। और यहाँ से आप नीचे जाओगे तो आबू रोड में शांतिवन है, वो भी बिजी रहता है, तो साल भर यहाँ लोग आते रहते, लेकिन कोई भी कमरे ऐसे नहीं है कि जहाँ पर कोई पे करके और घूमने के लिए आए हो और वो रहने के लिए आए हैं, नहीं, विथ प्रोग्राम जो आते हैं किसी भी चीज के लिए यहाँ अलग अलग पेमेंट फीस कहीं पर भी नहीं भरनी होती है। हाँ, लेकिन जो भी आते हैं वो समझते हैं कि ये आश्रम है और यहाँ पवित्र हमें सब कुछ मिलता है तो वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं पर भी आपसे कोई भी कि इस गाड़ी में बैठे तो ये पैसा, ये चाय पीने का ये पैसा, ये नाश्ते का ये पैसा आपको पेमेंट नहीं करना होता है, क्योंकि ये परिवार है, तो ये परमात्मा का परिवार है, आप सभी इस परिवार में आए हैं ऐसा अपने आप को महसूस करना। आप जो भोजन लेते हैं तो भोजन आपको जितना चाहिए लीजिए, पर झूठा मत छोड़िएगा, क्योंकि ये प्रसाद है, प्रसाद को झूठा नहीं छोड़ा जाता है और सभी के सहयोग से बड़े प्रेम से बनाया जाता है, तो आप बड़े प्रेम से खाइए सब चीज, कुछ भी आपको कमी हो। हाँ, तो आप जरूर कह सकते हैं, आपके हर एक बिल्डिंग में भी ऑफिस होगा तो वहां पे भी कोई ना कोई रहता है, नहीं तो कोई भी बेज लगे हुए भाई बहनों को आप मिलेंगे तो वो लोग भी आपको गाइड करेंगे। तो हम अभी 3 मिनट मेडिटेशन करते हैं और नीचे आप जरा कृति दीदी को सूचना दे देना कि आप आने वाले हैं तो फिर आ जाएं। ओके, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए, दो चीज है, मेडिटेशन सीखना माना मेडिटेशन कोई मंत्र नहीं है कि जो आप एक बार में सीख लेंगे और वो मंत्र की तरह आपको हमेशा काम आ जाएगा, है ना, बल्कि मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जो डेली करनी होती है पहली बात। और डेली करना माना कि आपको ध्यान होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो डेली आप अपने आप करोगे। जैसे भोजन आपकी नीड है ना, तो आप डेली खाते हैं ना, आपको याद आती है, आप बनाते हो, मांगते हो, ऐसे आपकी ये नीड हो जाती है एक। तो अब माइंड क्या है, माइंड को जब तक हम पहले की बिलीव सिस्टम के आधार पे सोचेंगे, आज तक हमको ऐसा कहा गया कि मन जो है बड़ा चंचल है, मन जो है बड़ा पापी है, मन जो है भटकाता है, तो लोगों ने आज तक मन का दमन करने की कोशिश की, है ना, व्रत उपवास ये सब करके मन को दमन किया। लेकिन मन का दमन नहीं करना है, मन को क्या करना है, सुमन बनाना है, मतलब पॉजिटिव गाइड करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है, दबाना नहीं है। जैसे बच्चे को मैंने कहा ना, ये कहो वो मत कर तो करेगा, तो हम मन को ऐसी कमांड ना दे लेकिन मन को पॉजिटिव कमांड दे। दूसरा क्या है, मन मेरा है, तो जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब ये किसके कहने से ऊपर जाएगा, मैं कहूंगी तब नीचे, मैं कहूंगी तो साइड में, ठीक है, तो मेरी ही तो मानता है ना ये। अच्छा, हम क्या करते हैं, मन कुछ कर रहा है तो हम खुद को तो निर्दोष साबित करते हैं, मैं तो बड़ा अच्छा करना चाह रहा था लेकिन मेरे मन ने ऐसा कर दिया। अगर मैं किसी को थप्पड़ मार दूं और मैं कहूं कि मेरे को नहीं मारना था, ये तो लोग मानेंगे नहीं ना, किसने चलाया हाथ, मैंने चलाया, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले तो ये स्वीकार करो, मन अलग है, मैं अलग हूं नहीं, आई एम माइंड। इसलिए आजकल कहते हैं माइंड योर माइंड, माइंड योर लैंग्वेज, जैसे माइंड योर माइंड कि मैं क्या सोच रही हूं, मैं सोच रही हूं, मेरा मन ऐसा है मत कहो, ये मैं ही हूं जो मैं सोच रही हूं। तो जब ये बिलीव सिस्टम चेंज करोगे, मन पापी नहीं है, मन चंचल नहीं है, मन हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मन हमारा बेस्ट पार्टनर है, मन हमारा सबसे अच्छा संबंधी है, रिलेटिव है, आप मन से जितना चाहे काम करा सकते हो, मन आपका सर्वेंट है, आपकी ही मानता है वो, पर आपने क्या किया अभी तक उसके प्रति अपना नजरिया ऐसा ही रखा है कि मन तो बहुत बेकार होता है, मन लगता ही नहीं कहीं, बैठता ही नहीं कहीं, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरा, सवेरे सवेरे का जो टाइम होता है ना, कोशिश ये करो कि सवेरे कुछ न कुछ मन को पॉजिटिव इनपुट डालो। जब तक आप इनपुट नहीं डालोगे तो आप उससे आउटपुट की अपेक्षा कैसे रखोगे, तो पहले इनपुट दो उसको, मन की अच्छी बातें करो, मन को शक्ति भरो। जैसे खुराक चाहिए पेट को, तो मन को क्या चाहिए, तो मन को कुछ गुड इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम सुबह सुबह उठते ही चाय का कप हाथ में लिया, न्यूज चला दिया, अब न्यूज क्या आई, इतने करोड़ों का स्कैंडल हो गया, 2000 का नोट बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब किसी न किसी तरह से हमारे माइंड में हम सवेरे सवेरे क्या भर लेते हैं, जिससे हमारी चिंता वाली बातें शुरू हो जाती है। तो सुबह सुबह आप बाकी सारी चीजों से फ्री रहिए, डिजिटल डिटॉक्स रखिए और क्या करिए, पॉजिटिव पुट अप दीजिए, अच्छी प्रार्थना, अच्छे विचार, अच्छी कोई लेक्चर सुन लो, है ना, थोड़ी देर जहां भी अच्छा लगे खुले में बैठिए, नेचर के साथ चलिए, बगीचे में थोड़ा वॉक कर लीजिए, इस तरह की चीजें करिए, आपको ऑटोमेटिक माइंड सवेरे से अच्छा फील करना शुरू करेगा। और कुछ ना कुछ आधा घंटा 20 मिनट भी आपको अच्छी बातें सुननी जरूर चाहिए। जब तक हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तब तक वो हमारे विचार बनते हैं। नहीं सुनेंगे नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो दिखेगा उसके बारे में सोचना शुरू हो जाएगा। काम तो चाहिए ना। तो मन को वश करना ऐसा नहीं सोचो, मन को बस आपको साथ लेना है, मन का हाथ पकड़ना है, चलो अभी अपन इधर चलते हैं, चलो अभी अपन ये करते हैं, ऐसे हर जगह अपने मन को साथ लेने की कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब तक दीदी आ रहे हैं, क्या होता है देखिए, जो जीवन है ना कुछ इस तरह से है, ये मैं हूं, मैं इस संसार में आया, ठीक है, ये मैं हूं सोल। लेकिन आने के बाद फिर क्या होता है, हमारे ऊपर कई प्रकार के सर्कल्स बनना शुरू होते हैं। जैसे मेरा नाम पड़ा, अब नाम के आधार पे, फिर मेरी कास्ट, फिर कास्ट के आधार पे सोचना शुरू किया, फिर मेरा एजुकेशन, फिर मेरी फैमिली, फिर मेरा एनवायरनमेंट, फिर मेरे फ्रेंड्स, फिर मेरा कल्चर, फिर उसके बाद मीडिया, मनी। अब ये सब इतना इतना हमारे ऊपर बढ़ने लगा। ठीक है। तो ये जो मेरा मैं हूं, इस पर टोटल कंट्रोल मेरा है, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ माय कंट्रोल। ये चीज केवल मेरे कंट्रोल में है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे में से किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा इसमें जी रहे और इसलिए मन उदास रहता है, क्योंकि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं वही सोच रही हूं, मेरा हस्बैंड कब अच्छा बनेगा, मेरा फ्रेंड कब ये करेगा, मेरा पड़ोसी कब सुधर जाएगा, मेरे टीचर कब अच्छा करेंगे, मेरी स्कूल में ये कब अच्छा होगा, मेरी गली कब साफ रहेगी, मेरे घर में ये खाना कब अच्छा बनेगा, पता नहीं मेरा, तो ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब क्या करना है, इस सर्कल को हमें बढ़ाना है। मैं क्या हूं, मेरा मन कितना अच्छा है ना, मेरे अंदर कितनी कितनी शक्ति है, कितनी शांति है, मेरे को भगवान ने कितना अच्छा जन्म दिया है ना, मैं कितना स्वस्थ हूं। तो जब हमारा ये सर्कल बढ़ेगा, जिसको बोलते इनेट हमारा बढ़ेगा, तो ये जो चीजें है ना ये छोटी हो जाएगी। बचपन में आपको सिखाया होगा ना, एक लाइन बनाते थे टीचर लोग, बोलते थे इसको टच नहीं करो, छोटा कर दो, बिना टच किए लाइन को छोटा कर दो, तो क्या करते थे। तो जो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, आसपास की चीजें हैं, उसको मिनिमाइज करना है, तो सर्कल ऑफ माय कंट्रोल, मेरा मन मेरा है, जैसा चाहूं बनाऊं, मेरी बुद्धि मेरी है, मेरा टाइम मेरा है, किसमें लगाना किसमें नहीं लगाना मेरे कंट्रोल में है ना, कैसा देखना क्या नहीं देखना मेरे कंट्रोल में। तो जो चीजें मेरे कंट्रोल में उसको मैं वाइंड करूं, स्प्रेड करूं, फिर क्या हो जाएगा, जो आसपास ठीक नहीं है, दुनिया में बहुत करप्शन है, लोग बहुत स्वार्थी है, लोग बहुत गुस्सा करते हैं, शोर बहुत मचाते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, ये सब अपने आप ही मेरे ध्यान में ही नहीं जाएगा, तो मन क्या हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, चेंज और एक्सेप्ट। ठीक है। ये फॉर्मूला कहलाता है, जो चीजें आप चेंज कर सकते हो उसको चेंज कर लो, और जो चेंज नहीं कर सकते हो उसको एक्सेप्ट कर लो। तो दो में से एक तो करना ही पड़ेगा, तो या तो इतने पावरफुल बनो कि आप सबको ठीक करो, वो जरूरत नहीं, उधर आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, लोग नहीं समझ रहे हैं, छोड़ दो। देखो ये समय है ना, ये दुनिया का बहुत टफ टाइम है, जिसको कलयुग बोलते हैं, सुना है ना आपने कलयुग, और कलयुग का भी ये एंड टाइम आ रहा है। तो ठीक है, तो सब कुछ तो परफेक्ट होगा नहीं, पॉल्यूशन भी होगा, ट्रैफिक भी होगा, है ना, मिलावट भी होगी, चीटिंग भी होगी, धोखा भी होगा, झूठ भी होगा, ये सब तो होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना, इसको एक्सेप्ट करो कि ये सब दुनिया में परफेक्ट होगा नहीं। और इसीलिए किसी ने कहा है कि एक अच्छे व्यक्ति की तलाश करने से पहले अच्छे बनने की सोचो। हो सकता है किसी और की तलाश पूरी हो जाए, तो हम तलाश करते रहते, तब तक हमारे अंदर क्या रहता है, पता नहीं मुझे कौन अच्छा मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है मैं अच्छा बनूं, ये कॉन्सेप्ट में लाओ, फिर आपके माइंड पर आपका ही जोर चलने वाला, आप ही सब कुछ कर लेंगे फिर।